Está sabía de diga. पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौरत्विषे हे कृष्णकरुणासिन्धो किमबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि आदेवी काकू भर गद गदयाद्यवाच जाचे निपत्त भूमि दंडवत उदसारते अस्य प्रसादमबुदस्य जनश्रुत्वा वृन्दाविके तव गणे गणनम् अङ्गश्यामलिमिच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जट्टञ्जागुदरोचि साङ्विदगतङ्गपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि न सद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् भक्त्याभिहीनाय पराधये चित्ताश्रुतामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेति द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां च आज की विजयादशमी ना आज विजयादशमी की तिथि है। विजया दशमी है। इसका महत्व प्रधान रूप से रामचंद्र जी की विजय यात्रा से है और इधर हम लोगों के गुरु परंपरा में मध्वाचार्य जी का जन्म स्थान है। इन दोनों से ये इसका महत्व है। आज के दिन चैतन्य महाप्रभु लंका पर विजय के लिए वहाँ पर क्रीड़ा की थी पुरी में। नित्यानंद प्रभु और जितने थे सब मुरारी गुप्त इत्यादि सबका आवेश हुआ, किसी का बंदर में आवेश, किसी का कुछ। और ये लोग आज रावण पर लंका में आक्रमण करने का ये भाव दिखला है, पेड़ों की डालों को तोड़ लिए और तोड़ करके कूदते हुए लंका पर आक्रमण करके उसके भवन इत्यादि को गिरा दिया। इस तरह का अभिनय उन लोगों ने किया, आविष्ट हो गए महाप्रभु। वो एक अभिनय। तो आज के दिन भारतवर्ष में सर्वत्र ही रामलीला में लंका में रावण का वध दिखलाया जाता है। वो वध इसलिए कि लंका के लिए सचमुच में रामचंद्र जी ने विजय यात्रा की थी और उसी उल्लास में उनको वध भी दिखला दिया जाता है। तो आज के दिन वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु एक तरह से प्रारंभ होने को ही है। वर्षा अब बंद हो गई। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूले काश सकल मह छाई। सब सर्वत्र ही काश मैने काश फूल एक होता है, मैंने ये कुश जो होता है उसमें फूल हो जाते हैं सफेद, वो चारों तरफ में जब खिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब वर्षा ऋतु एक तरह से शांत हो गई। चल अभी हम लोग आ रहे थे पुरी से, पुरी से ना
पूरी हम लोग जब जा रहे थे तब
तब कम था, किंतु जब आ रहे थे तो देखा जो सर्वत्र फूले हुए सफेद सफेद। इसका मतलब है जब वर्षा ऋतु चली गई, अब शरद ऋतु जैसा सवेरे में कुछ ठंड अब लगती है, महसूस होती है, वर्षा ऋतु अब चली गई। तो आज ही के दिन में उसके कुछ दिन पहले ही हनुमान जी लंका से आए। आए तो सबसे पहले ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव के राजभवन के पास में रामचंद्र जी रहते थे, ऋषिमुख पर्वत पर। तो वहाँ पर नहीं गए, अंगद और जितने ये सब थे जो उनके साथ में थे सब मधुबन में प्रवेश कर गए। मधुबन माने सुग्रीव का बनाया हुआ मधुबन था, उसमें पहुँच गए। अब पहुँच करके फल के जितने सुंदर सुंदर फल तोड़ने लगे, मधु वहाँ पर छत्ते लगे थे उसको तोड़ ताड़ करके ऐसे कर करके मधुपान करने लगे। रखवाले उनको मना करे, किसी को उसमें जाने का अधिकार नहीं था, किंतु ये लोग जब गए तो उन बंदरों ने मना किया मत इसमें घुसो, किंतु वो उसकी न सुन करके उसको भी पीट पाट दिया, थप्पड़ थप्पड़ चला दिया। इसलिए रामचंद्र जी का इतना बड़ा भारी काम करके आए हैं हम लोग, अब हम लोग भरपेट अब तो खाएंगे अब पिएंगे, और कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। वो जानते थे ये रामचंद्र जी का इतना हम बड़ा भारी काम कराए हैं, इसलिए सुग्रीव जी राम जी लक्ष्मण जी सभी बड़े प्रसन्न होंगे। वो इस बात को जानते थे इसलिए वो खाने लगे। जब रक्षक आए तो उनको मारपीट करके भगा दिया, पेड़ों को भी तोड़ ताड़ करके और सब खाने पीने लगे। सुग्रीव के पास में वो गया रक्षक, ये हमें पीट पाट कर और वो सब मधुबन को उजाड़ कर रहे हैं, फलों को खा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पत्ते गिरा रहे हैं, मधु को भी पान कर रहे हैं, बड़े अच्छे बड़े बहुत दिनों से इसकी रक्षा करके हम लोगों ने रखा। तो श्री गुरु ने कहा अच्छा मैं अभी जाता हूँ, ये कहकर उसे लौटा। लेकिन तो मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए, जो किसी का सास नहीं घुस सके, किंतु हमारा यह प्रिय कार्य सीता जी को पता लगाने का काम वो जरूर पूरा करके आए, नहीं तो उनको सास नहीं होता। वो समझ गया, बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके उन लोगों के आने की अपेक्षा न कर खुद ही वहाँ पर जाने लगे। जब वहाँ पर पहुँचे देखा तो ये बड़े प्रसन्न हो करके सब अंदर लोग आए, क्या समाचार लाए, आ तो हम लोग काम पूरा कराए। तभी रामचंद्र जी के पास में चले, उसके लिए वो दंडित नहीं किया, उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा, बड़े प्रसन्न होकर के ही बस रामचंद्र जी के पास में गए। हनुमान जी बड़ी नम्रता के साथ में रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया और सीता जी की वो चंद्रिका जो उन्होंने दी थी, इनकी अंगूठी तो उनको दे आए और उनकी चंद्रिका लाए थे और वो उनको दिया। किस लिए दिया? प्रतिति के लिए। मैं गया था सीता जी से भेंट की, इसका प्रमाण क्या है यदि कोई पूछे? देखिए, यह सीता जी के अतिरिक्त और किसी का हो सकता है नहीं, आप पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए। उन्होंने पहचान लिया, पर यह सीता जी को छोड़कर क्या तो कहीं से मिल नहीं सकता, तो बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान को उनके चरणों में वो गिर गए, उन्होंने उठाया और उनको बहुत आशीष दी। अभी इसके बदले मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, इस प्रिय समाचार के अंतर्गत अब हम लोग वहाँ पर चलेंगे, रावण पर आक्रमण करके उसे विजय करके उसके वंश के सहित ध्वंस करके और सीता जी को लौटा। उन्होंने कहा था, हमने सीता जी को कहा मैं आपको अपने पीठ पर बैठा करके उस पार चला जाऊंगा और रामचंद्र जी से मिला दूँगा। उन्होंने कहा कि ये तरीका मुझे पसंद नहीं है, मैं विवश होकर के रावण को मैंने स्पर्श किया, उसने हमको स्पर्श किया, किंतु मैं जैसे भी तुम हो मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता, विवश में और बात जानबूझ करके मैं ऐसा नहीं कर। इसलिए स्वयं रामचंद्र जी आए और उसे परास्त करके उसे दंड दे करके तब मुझे ले चलेंगे, तब मैं चलूँ। सीता जी ने, रामचंद्र जी ने भी इसको सराहा। इसके बाद में सब लोगों को बुला करके ये मंत्रणा की कब चला जाए। उन्हें अच्छी बात है, एक महीने पहले की ये सब बातें हैं, वर्षा ऋतु अब शेष होने जा रही, किंतु उन लोगों ने सब लोगों ने मिल करके स्थिर किया जल्दी से सब जगह भेज दी जाए आदमी और सब लोगों को जल्दी से जल्दी बुला लाए। पृथ्वी में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो वाल्मीकि रामायण में जैसा वर्णन मिलता है, कहाँ मंगोलिया, कहाँ कोरिया, कहाँ जापान, चीन, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, माने कोई भी स्थान का वर्णन बाकी नहीं है जहाँ जहाँ पर कि ये अपने दूतों को भेज करके वहाँ वहाँ के बंदरों को, ने जहाँ जहाँ पृथ्वी में बंदर है ना सबको उन्होंने और उसका विवरण दिया गया कहाँ कहाँ वो लोग वहाँ वहाँ से सब बंदरों को बुला लिया। और ये बंदर कौन थे?
देवता लोग
अपने अंशों से बंदर में जन्म लिए हैं, नहीं तो इतना बड़ा भारी काम नहीं कर सकते थे। वो सब लोग आ जाने के बाद में तय किया गया कि आज ही के दिन ये दशमी है और इसमें दशमी में यात्रा करने से क्या होता है?
भूमि लाभ
माने राज्य लाभ आता, तो लंका का राज्य भी हम लोग जीत लेंगे। और उस समय में मुहूर्त सब बड़े अच्छे थे, बस आज ही के दिन में ये सेमल के वृक्ष के नीचे थे, सांवली वृक्ष, किस लिए थे? थोड़ा सा विरह का सूचक है, इसलिए वहाँ से कष्टों का सूचक है, कांटे होते हैं उसके नीचे हैं। रामचंद्र जी खूब आराम करके ऐसे वृक्षों के तले नहीं है जहाँ पर कि आराम से रहा जा सकता है सीता जी के, तो वहीं से आज कुछ करने का आदेश। सब लोग अपने अस्त्र, उन लोगों का अस्त्र क्या है? बंदरों का अस्त्र जहाँ से पत्थर है, पेड़ पौधे जो कुछ मिल जाए वही होता है, और दांत सबसे बड़ा अस्त्र है, और उनका हाथ और इन मुष्टिका। लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी जब अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे तो अगस्त जी बड़े प्रसन्न होकर के अपनी धनुर्विद्या जो उनके पास में थी और जो बड़े दुर्लभ दुर्लभ अस्त्र थे, मंत्र थे, वो सब इनको दिया और देखकर कहा जैसे इसी अस्त्रों से आप रावण का वध कर सकते हैं। अक्षय तुण भी दिया और वो धनुष दिया जो कभी कटेगी नहीं, और बाण ये सब तुण होता है जिसमें बाण रखते हैं, जो जितना ही बाण लेंगे उतना वो अपने आप भरता जाएगा। इसलिए रामचंद्र जी के और अर्जुन का जीतने का यही प्रधान कारण था, और लोगों को गाड़ी से वो करके ले जाना पड़ता था, बाण को भी समाप्त हो जाता था, और इनका वो तूल में रहता था, बस निकाला निकाला वो भरता रहता, इसलिए शत्रुओं को हराया। तो उस दिन उनका पूजन किया अस्त्रों का शस्त्रों का, और पूजन करके तब आज ही के दिन में कुछ किया कहाँ से बांध रामेश्वर की तरफ में समुद्र के किनारे जहाँ से लंका सबसे निकटतम दूरी पर है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ भी पहुँचे नहीं मैंने यात्रा कर दी। अब कितने दिन में वहाँ पर पहुँचे होंगे ये तो इसीलिए दशमी विजया दशमी इसीलिए कहा, आज दशमी के दिन उन्होंने विजय के लिए ये सब स्पष्ट रूप से लिखा है। अब लोगों ने ये समझाया कि आज विजया दशमी है, आज ही दिन रावण को मारा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि सबसे पहले एक बात है, यदि रामचंद्र जी आज रावण को मारते, ये अभी कार्तिक महीना का प्रारंभ है, अभी आरंभ भी नहीं हुआ तो पूर्णिमा से लगेगा, अभी तो दशमी है तब पूर्णिमा आएगी, तो यदि मारा तो कार्तिक अग्रहायण पौष माघ फाल्गुन ये पांच महीने रामचंद्र जी क्या लंका में वास किया, जिस दिन उसको मारा, मारने के बाद में उस दिन आए थे युद्ध विश्राम हुआ होगा, दूसरे दिन रावण का सत्कर्म होगा, तीसरे दिन लंका रावण विभीषण जी सीता को लेकर के वहाँ पर आए, अग्नि परीक्षा हुई और वो सीता जी को उन्होंने अपनाया, और इसके बाद में दूसरे दिन लक्ष्मण जी को भेज करके उन्होंने उसका अभिषेक करवाया, विभीषण का अभिषेक करा करके वहाँ का राज्य दिया, और उसी दिन वहाँ से चल पड़े अयोध्या के, अयोध्या से चल पड़े, कितने दिन में अयोध्या पहुँचे होंगे,
एक ही दिन में
एक घंटा भी नहीं होगा, मन की तीव्र गति से वह चला और नंदी ग्राम में
जाके रुका,
नंदीग्राम में एक बार उठा सीता जी के साथ में, ऊपर से ही देखते गए थे, क्षण मात्र में ही नंदीग्राम में पहुंच गया। नंदीग्राम से पहले हनुमान को उतार दिया, जबकि वो निषाद राज के वहां पर उसी जगह में उतार दिए, और वो नंदीगांव आकर के भरत जी को संदेश सुनाया। भरत जी उस समय आग में जल मरने के लिए तैयार,
प्राण देने के लिए तैयार,
यदि रामचंद्र जी एक दिन भी विलंब करेंगे आने का दिन, किस दिन चले थे, चैत्र महीने की नौवीं में चले थे, चैत्र महीने की नौवीं में जरूर उनको आ जाना है, जरूर लौटना है, नौवीं के दिन नहीं आएंगे, रहा एक दिन अवधि आधार, एक दिन केवल बच गया था, सोचा जे आज नहीं आएंगे तो कल मैं देखूंगा और उसी दिन शाम को मैं अपना प्राण प्रत्याग करूंगा, आग में जल मरूंगा यदि राम नहीं आए नौमी के दिन। इसलिए चैत्र महीने की नौमी को राम को लौटना था, यदि आज वो विजय कर लिए होते रावण को मार देते तो ये पाँच छः महीना उनका समय कहाँ लगा, कहाँ उन्होंने बिताया। इसलिए यदि हम ले लें रावण को मारा एक दिन, दूसरे दिन सीता जी उसका दाह संस्कार, तीसरे दिन राज्याभिषेक और सीता जी का उस दिन है, चार दिन है, पांच दिन रहो और छठे दिन वहाँ से चल दिए। तो छः दिन में तो रामचंद्र जी का नवमी के दिन आकर के अभिषेक हो सकता है, सात आठ और नौवें दिन हो जाएगा रामनवमी को उनका राज्याभिषेक हुआ। ये तो संभव है जब फाल्गुन महीने के अंत में अंतिम सप्ताह में उसको मारा और ये एक सप्ताह काल राज्याभिषेक होने तक उनका लग गया, तो ये तो ठीक। किंतु यदि आज मारना यदि देखें रावण का, तो ये पाँच महीना समय रामचंद्र जी कहाँ ठहर सकते हैं, ठहर नहीं सकते। इसलिए जैसा शास्त्रों में बतलाया गया है कि आज युद्ध की यात्रा की और जा करके तब फिर वहाँ पर युद्ध हुआ, समुद्र को पार किया और समुद्र को पार कर कितना दिन युद्ध हुआ, 90 दिन या कितना दिन,
तीन महीना
हुआ ना, 90 दिन करीब करीब इतना दिन युद्ध हुआ। तो ये ठीक बैठता है, यहाँ से पार करने में, समुद्र को पुल बांधने में, यहाँ तक पहुँचने में और विभीषण के अपने भाई से मारे जाने के बाद में वहाँ पर आने में कुछ दिन समय रख लीजिए। और युद्ध हुआ 90 में, तीन महीना वो हुआ, एक महीना इधर में, एक महीना डेढ़ महीना और वो थोड़ा सा दिन, तब ये संगत बैठती है। जैसे
जो दिवाली मनाई जाती है
ये रामचंद्र जी ने वही तो बताया, रामचंद्र जी ने युद्ध के लिए लंका विजय के लिए यात्रा की, रामचंद्र जी ने युद्ध के लिए जो यात्रा की इसीलिए बड़े बड़े राजा लोग आज ही के दिन अपने हथियार को माजते हैं, चलते हैं और शिकार खेलने जाएंगे या थोड़ा सा इधर उधर लड़ने का ये सब दिखलाते हैं, तभी से ये चल पड़ा है रामचंद्र जी के खुशी के रूप में। जय रामचंद्र आज विजय, हम लोगों में वैष्णव में एक है, गुरु जी ने आज यहाँ से विजय किया, एक यहाँ पर विजय किया और यहाँ से विजय किया, तो यहाँ से विजय मैंने गुरु जी आज यहाँ से विजय किया, अतः तो यहाँ से यात्रा उन्होंने की, ऐसा ये सब शब्दकोश में और साहित्य में भी इसी प्रकार का। इसलिए आज के दिन ही लंका पर चढ़ाई करने के लिए रामचंद्र जी ने बंदरों के समाज के सहित और ऋक्षों के और सुग्रीव और सबको लेकर के आज के दिन में यात्रा की, दंड वहाँ से ऋषिमुख पर्वत के पास। किंतु आज से करीब 250 वर्ष पहले इसी तरह से हो रहा था, किंतु 250 वर्ष पहले बंगाल में एक कवि हुए, उसका नाम था क्या,
कृतिवास।
वो महान शाक्त थे और कवि तो थे ही, उन्होंने सोचा जैसे साधारण पब्लिक में बंगालियों में बड़े भाव खिल गए के होते हैं, यदि रामचंद्र जी से किसी प्रकार से देवी की पूजा करा दें तो लोगों में ये प्रचार करने का बहुत सुंदर अवसर होगा कि जब रामचंद्र जी ने उनकी पूजा की तो हम लोग क्यों नहीं पूजा करें। इसलिए रामचंद्र जी के जन्म के समय में नवरात्रि और इस समय में रामचंद्र जी लंका के लिए जब विजय करते हैं तब नवरात्रि, ये दोनों राम के ही हैं, इसलिए रामचंद्र जी के लिए उनकी पूजा करवाने के लिए एक ऐसा ही मन ही मन में षड्यंत्र रचा और उन्होंने एक रामायण लिखा, उसको कहते हैं कृतिवासी रामायण, और उसमें उन्होंने वर्णन किया रामचंद्र जी जिस समय में सेतु बांध रामेश्वर में पहुँचे, सेतु माने उस समय तो सेतु बांध रामेश्वर था नहीं, तो वहाँ पर देवी की पूजा करेंगे जो हम पार करके जाएं, समुद्र हमको रास्ता दे दे और रावण को मैं मार सकूंगा, इसलिए देवी की पूजा करें। लेकिन तो ये पूजा कमल के फूलों से करेंगे,
108 कमल
और 108 शुभ संख्या है, इसलिए सुंदर सुंदर
नील कमल
फूलों से, नील कमलों से
देवी के लिए वो पूजा करेंगे। तो वो पूजा करने के लिए लाए तो देवी ने चालाकी चतुराई से एक पुष्प चोरी करके रख दिया। कृतवासी ये मन ही मन ऐसा वो कर रहा है,
कल्पित
पुस्तक में लिख रहा है, कहीं भी इसका किसी भी पुराण में शास्त्र में उल्लेख। रामचंद्र जी जब पूजा करने लगे करते करते एक फूल नहीं रहा,
107 हो गया,
107 ही रहा।
पूर्णाहुति
नहीं होगा तो पूर्णाहुति तो हुई नहीं, अब 108 फूल नहीं हुए बिना तो वो होगा नहीं। तब उन्होंने सोचा जैसे अब मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं लेने के लिए, अब तो समय है नहीं, पूर्णाहुति का समय बीत जाएगा पूजा का। इसलिए रामचंद्र जी ने बाण लगा करके
सोचा बोले मुझे सब नीलकमल खाते हैं तो मैं एक आँख को निकाल कर
अपनी आँख को निकाला और आँख से ही उनकी पूजा किया।
आँख निकालने गए तो पकड़ लिया
देवी ने उनको, बर दिया कि तुम रावण को मारोगे और समुद्र को भी पार हो जाओ। इस तरह से चालाकी चतुराई से देवी के उन्होंने कल्पना करके उनके द्वारा पूजन करने का उल्लेख कर दिया। तभी से धीरे धीरे बंगाली समाज में धीरे धीरे उसने सबसे पहले देवी की पूजा इसमें और उस दोनों में नवरात्रियों में जिसको नवरात्रि कहते हैं ये दोनों पूजा उन्होंने आरंभ की। तो इसे रामचंद्र जी का संबंध है देवी से कोई, अच्छा उस दिन न देवी का जन्म है न देवी का शंकर से विवाह का दिन है, कोई भी देवी का संबंधित नहीं है। दोनों को नवरात्रि देवी के लिए नवरात्रि जागरण का देवी का पूजा। यदि रामचंद्र जी की पूजा होती तो कोई बात नहीं थी, किंतु रामचंद्र जी का कोई भी पूजन नहीं होगा। और सब अगर 9 दिनों तक देवी की पूजा करेंगे लोग और उसको नवमी को विशेष रूप से और दशमी को विसर्जन, आज विसर्जन शाम को करेंगे, आज ही ना, आज शाम को अपनी प्रिय देवी जी को जमुना जी में उल्टा करके फेंक देंगे।
कृतिवास में लिखा तो आप तो देखते हो बंगाली में से ब्रज में तो इनका बहुत प्रचलन है, 9 दिन व्रत करते हैं
बंगाली, बड़े भावुक और बड़े तेज
होते तो व्रत नहीं करते, तो ब्रज वाले बिना खाए थे क्यों मरते हैं?
देखा देखी वैष्णव लोग तो करते नहीं, वही लोग जो वो उन्होंने प्रचार किया देवी धन संपत्ति पुत्र लक्ष्मी प्रतिष्ठा सब कुछ, ये सब कुछ सहज रूप में देती हैं। इसलिए सोचा जब बंगाली लोग सब बड़े तेज होते हैं, उनको धन धन से पूरे होते हैं तो हम लोग भी करें। इसलिए कि उनका काम खत्म हो गया, हमको मिल गया सब चीज, उनको फेंक दो अब जरूरत
है। जैसे लड़की को पालते हैं फिर शादी करके विदा करते हैं, ऐसे
यहाँ से ले जाओ जहाँ पर तामसिक पूजा होती है, जो लोग अधिक शरीर में जो मैं शरीर हूँ उसमें व्यस्त रहते हैं वहीं पर ऐसी तामसिक पूजाएं होती हैं। प्राचीन काल में भी जो लोग तामसिक होते थे वही विंध्यवासिनी दुर्गा काली इत्यादि की पूजा करते थे। पूजा तो होती है बहुत काल से, किंतु इसी दोनों समयों में नवरात्रि का पूजन नहीं होता था। वो बंगालियों के बाद में जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ पर अधिक तामसिक पूजा ये बंगाल में आसाम में और पंजाब में, ये 3 जगहों वहीं से पंजाब लोगों की तरफ से विशेष करके आजकल जहाँ कहीं भी कीर्तन होता है भगवती जागरण इत्यादि सब उन्हीं लोगों का ये विचार। धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने भी उसको ग्रहण कर लिया। इस तरह से यहाँ पर धीरे 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 देवी देती हैं धन लक्ष्मी पुत्र इत्यादि देती हैं, सबको इसी की जरूरत है। पहले लोग केवल कृष्ण का भजन करते थे और उनको आत्म तत्व और प्रेम की जरूरत होती थी इसलिए वैसा करते थे, अब ऐसे लोगों का क्रमशः अभाव हो गया और यही सब चीज़ें चाहते हैं।
इसलिए उनकी पूजा का प्रचलन सहज रूप में सर्वत्र हो गया। आज भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कि इस तरह की पूजाएं हैं। कभी जहाँ पर भी होता है इतने जोर शोर से वो बंगाली ही करते हैं।
तुम्हारा चंडीदास और गोविंद गोविंद तो देवी पूजा करते
किंतु मैंने आज के दिन नवरात्रि वाला में नवरात्रि का विशेष रूप से प्रचलन इन लोगों ने ही सर्वत्र किया, नहीं तो ये रामचंद्र जी के जन्म से संबंधित है।
दिवाली
सुनती
रामचंद्र की खुशी मनाई जाती है या
दिवाली में दिवाली प्राचीन काल से ही मनती आ रही है। इसको प्रहलाद महाराज जी का समय का भी बतलाते हैं और तभी से वो एक वेद का मंत्र है, माँ तमसा गमय ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ में हम लोग चले, माने आत्मा की तरफ में चले, भगवान की तरफ में चले। ये संसार के प्रति जो आसक्ति है ये तमसा है, अंधकार है। इधर मत जाओ भोग विलास की तरफ में, संसार की तरफ में न जा करके भगवान की तरफ में जाओ। इसलिए ज्योति का स्वरूप पवित्र माना गया। विशेष करके प्रहलाद महाराज जी के समय से ऐसा माना जाता है संसार में दरिद्रता महा एक अभिशाप है। तो आज के दिन से अभी अन्नकूट आएगा ना, अन्नकूट से जाड़ा आरंभ हो जाता है और अन्नकूट में गोवर्धन की पूजा होती है। तो प्रतिपदा के दिन में सब हमारे भारतवर्ष में सर्वत्र नियम है, अभी यहाँ है कि नहीं मैं नहीं जानता, कि गोबर के बनते हैं गिरिराज, उसके पहले रात में 3 बजे 4 बजे उठ करके महिलाएं सूप बजाती हैं, हाँ दरिद्र को निकालती हैं, अलखी माने दारिद्र, दरिद्रता को दूर करते हैं, बजा करके निकलो घर घर में प्रदीप रहता है, एक स्त्री प्रदीप लेती है और दूसरा सूप, और सूप को बजाती है। मंगला में है बिहार में यह सर्वत्र। और उसके बाद में गोबर का बनाएंगी गोवर्धन, कौड़ी का दांत बनाएंगे, किसी चीज का आंख बनाएंगे और घासों के केश बनाएंगे और उनका पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद में थोड़ा थोड़ा लेकर के अपने घरों में पिंडी लगाती हैं, ये सब का नियम है। अर्थात तो गोबर के द्वारा गो सेवा के द्वारा हमारा परम मंगल होगा, इसलिए गिरिराज जी का गोवर्धन, गो माने धन, गो माने गाभी इत्यादि का वर्धन हो, इसलिए गिरिराज गोवर्धन की पूजा करते हैं। और जहाँ पर स्वयं गिरिराज हैं वहाँ पर अब गोबर की पूजा करने की कोई कभी गाँव गाँव में इसलिए पूजा करते हैं, गोवर्धन की शिरा सभी लोग ले आए तो गोवर्धन रहेंगे ही नहीं, इसलिए उसके बदले में यही व्यवधान दिया गया है कि सब लोग अपने अपने घरों में गोबर से उनकी प्रतिमा बना करके उनका पूजन करें। उसका पूजन करने से दारिद्र दूर होगा और साथ साथ में धन संपत्ति आएगी घर में, लक्ष्मी, और इसके बाद में तब ये होता है गोवर्धन की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है और सब गो क्रीड़ा होती है, ये सब होता है सब जगहों में ध्यान। तो किसी लेकर
दीपावली
उन्होंने पूछ दिया बीच। तो आज के दिन में नवरात्रि नहीं बल्कि ये रामचंद्र जी की विजय यात्रा, इसलिए आज भी जितने क्षत्रिय लोग हैं, जितने कर्मठ लोग हैं, जैसे कि मिस्त्री ये सब औजार लेकर के राजमिस्त्री का काम करते हैं और अपने अपने औजारों की अपने अपने अस्त्रों की आज पूजा करें और काम नहीं करते। विश्वकर्मा पूजा तभी गया,
आज के दिन
हैं
उस समय अभी भी आज के दिन में क्षत्रिय लोग विशेष करके, और जैसे ये कह रहा था हम लोगों का ये मिस्त्री, आज हम लोग काम नहीं करेंगे, आप आज हम अपने औजारों की भी पूजा करें, तो वो सब करते। तो क्षत्रिय लोग ये विशेष करके राजस्थान के राजा लोग अपने अपने तलवारों को खूब साफ करते थे, और आज ही के दिन में विजयदशमी के दिन में विशेष करके आमेर नामक स्थान जो जयपुर के अंदर में है, आमेर वहाँ पर मंदिर भी है चांदी का, और उसमें प्रतिमा भी है देवी जी की चांदी की, बहुत दूर दूर से लाखों लोग एकत्रित होते हैं, और 10-20 भैंस भैंसे उनको पकड़ करके लड़ाते हैं, फिर उनको काटते हैं, काट करके देवी जी को बलि चढ़ाते हैं, और भी सब जगह बड़ी देवी की पहले बड़ी प्रथा थी, आज तो धीरे 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 लोगों ने बंद करा दिया, नहीं तो पहले यही सब होता था। आज के दिन बड़ा पशु हिंसा और ये सब देवघर और सब स्थानों में जहाँ जहाँ, आज वहाँ पर भी पूरी में भी बिमला देवी के सामने बड़े सब पशुओं की हत्या सब लोग करते हैं, हाँ जगन्नाथ मंदिर में रक्ता रक्त हो जाता है आज, इसलिए कोई भी वैष्णव लोग आज मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं दर्शन करने, अभी भी पहले से कम हो गया है किंतु अभी भी ये सब होता है। आज ही के दिन में हमारे गुरु वर्गों में मध्वाचार्य जी का आविर्भाव, त्रेता में हनुमान जी थे, उन्होंने रामचंद्र जी की सेवा की, वही जब कृष्णचंद्र जी राम जब कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए तो हनुमान जी ही भीम के रूप में हुए। ये हनुमान जी कौन हैं? स्वयं शंकर जी भीम हुए, और जब कलयुग आया तो वही भागवत भक्ति का प्रचार करने के लिए हनुमान जी जो भीम हुए थे वही भीम फिर हो गए, मध्वाचार्य के रूप में प्रकटित हुए। बचपन का नाम वार्ष्णेय था इनका, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, समुद्र से कुछ ही दूरी पर उनका घर था, उनका घर था उडुपी में, पाजका क्षेत्र में, वहां से समुद्र 3-4-5 माइल की दूरी पर होगा। प्रतिदिन वहां से समुद्र में स्नान करने जाते थे, थोड़ी उम्र में ही बड़े भारी विद्वान हुए, जो कुछ सुनते थे उनको याद हो जाता था, श्रुतिधर थे, ये इतने श्रुतिधर थे वेद का मंत्र, पुराणों का, सब पुराणों का मंत्र, उपनिषदों का मंत्र जितना है सब उनको याद थे, सब श्लोक। इसलिए श्रीमद्भागवत की उन्होंने टीका की है, वो टीका में शास्त्रों से श्लोकों को केवल कोटेशन किया है, उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्या किया एक्सप्लेनेशन के रूप में टीका और भाष्य के रूप में या व्याख्या के रूप में उन्होंने केवल वही श्लोक सब कोट कर दिए, ये इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, एक एक शब्द का अर्थ एक एक श्लोक में इस प्रकार से उसको दिया प्रामाणिक। ये मध्वाचार्य हमारे अद्वैतवाद के सबसे कठोर समालोचक थे, तो उनके पहले रामानुज थे और लोग हुए हैं, पीछे से भी निम्बार्क और सब लोग हुए हैं, किंतु मध्वाचार्य ने अपने वेद और उपनिषद के प्रमाणों पर जितना खंडन किया है उनके अद्वैतवाद का, उतना खंडन किसी ने नहीं किया। ये लोग खंडन करते हैं और उनके रामानुज अद्वैत संप्रदाय के लोग, शंकर संप्रदाय के लोग उसको खंडन करने के लिए दूसरा ग्रंथ लिखते हैं, उनके शिष्य लोग 1000 ग्रंथ उसके बदले में कर देते हैं। मणिमंजरी अंतिम में लिखी गई, छोटा सा एक 5-10 पृष्ठ का ग्रंथ, और उसमें अद्वैताचार्य के जितने सूक्ष्म विचार थे, जयतीर्थ नारे जयतीर्थ देखो,
प्रकाशित होकर आचार्य को जो नारायण भट्ट करते
हुए तो उन्होंने इतना सुंदर लिखा सहज उक्तियों के द्वारा, जैसे सहज युक्ति हम तो विचित्र ये सब देख रहे हैं तो एक कैसे होंगे, ऐसे ही सरल सहज युक्तियों पर माया बाप की जितनी युक्तियां हैं सब थोड़े में ही ऐसा खंडन किया है कि अब तक का लिखा हुआ उनका सार समाप्त कर दिया। तब सब लोग जा करके काशी में गए और मधुसूदन सरस्वती नाम के एक बड़े भाई दिग्विजय पंडित थे, उनकी शरण ली। उस पांच पृष्ठ के पुस्तक को खंडन करने के लिए उनको अद्वैत सिद्धि कम से कम तो 5-6 हजार पृष्ठ की पुस्तकों में करना पड़ा, तो भी नहीं हुआ, तो भी नहीं हुआ उस सबका खंडन। वही हरि मंजरी का, किंतु खंडन नहीं हुआ। और वही मधुसूदन सरस्वती ने, उन्हीं मधुसूदन सरस्वती ने जी गोस्वामी के द्वारा संघ से वो अद्वैतवादी से वैष्णव धर्म में आकर के लिखा कि